बिटिया, अब हमें कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा तुम लोगों को राखी बंधवाने का। तुम फिक्र मत करो, हम कुछ ना कुछ ज़रूर सोचेंगे। और हाँ, बिल्कुल भी तुम लोगों का मायूस होना ठीक नहीं है। हमें पसंद नहीं कि हम अपनी बिटियाओं की आंखों में आंसू देखें। ये बोलकर नानी माँ ने प्यार से उन लोगों को डांट भी दिया। वहीं दूसरी ओर वीर, जो कि एक बार फिर से रौनक की फरमाइश पर उसके पसंद की चाट पकौड़ी लेने के लिए बाहर आया हुआ था। रौनक जिस जगह की चाट पकौड़ी खाया करती थी, वहां पर चाट पकौड़ी लाइन लगाकर मिला करती थी। उस वक्त वीर वहीं खड़ा होकर लाइन में लगा हुआ था और पूरी तरह से इरिटेट भी हो रहा था। तभी वसुंधरा ने उसे फ़ोन किया। दादाजी ने उन दोनों की थोड़ी सी सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए छोटे मोटे फ़ोन दोनों को दिला दिए थे। वैसे भी बाजार से अगर कुछ मंगवाना होता था तो वीर को फ़ोन पर ही जानकारी दी जाती थी। फिलहाल वसुंधरा ने तुरंत ही अजीत से बात कर ली थी और वीर जिस जगह गया हुआ था वहीं उसने अजीत को भेज दिया। वहीं अजीत, जो किसी तरह से वीर के हर एक गुस्से और हर एक बात का आदी था, अब अजीत जैसे ही चाट पकौड़े वाले के यहाँ पहुंचा और उसने ये देखा कि जो कभी उसका बॉस हुआ करता था मामूली से कपड़े पहने लाइन में खड़ा है, तो कहीं ना कहीं अजीत को मन में बहुत हंसी आई। लेकिन उसने खुद पर काबू किया और तुरंत जाकर वीर के सामने खड़ा हो गया और बोला, बॉस। जैसे ही वीर ने किसी के मुंह से अपने लिए ये शब्द सुने, वो पूरी तरह से हैरान रह गया। अजीत को देखकर उसे गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे काश कोई गड्ढा खुद जाए और वो उसमें समा जाए। आज उसका वही मामूली सा कर्मचारी, जो उसके हर एक हुक्म का पालन करता था, बढ़िया महंगे सूट बूट पहने उसके सामने खड़ा था और वीर खुद उसका नौकर लग रहा था। अजीत ने फिर कहा, बॉस। वीर बहुत शर्मिंदा हो गया। उसने अपनी नज़रें झुका ली, फिर अपनी झिझक छोड़कर अजीत के गले लग गया। कुछ देर बाद दोनों एक पेड़ के पास बने पार्क में जाकर बैठ गए। अजीत ने आंखों में छलकते आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आपकी ऐसी हालत हो जाएगी। सच कहूँ तो आपको देखकर लगता है जैसे धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। फिलहाल बॉस, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपकी मदद करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अरमान सिंघानिया के सख्त इंस्ट्रक्शन थे कि कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाए। अगर किसी ने कोशिश की तो वो उसे भी रातों रात गायब करवा देता, इसीलिए मैं उस वक्त आपकी मदद नहीं कर पाया। लेकिन आज जब आंटी ने मुझे कॉल किया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और आपसे मिलने चला आया। फिलहाल आंटी ने कुछ ज़रूरी सामान मंगवाया था, मैं आपके लिए वही लेकर आया हूँ। ये कहते हुए अजीत ने अपने हाथ से दो सफ़ेद रंग की पुड़िया वीर के हाथों में थमा दी। वो पुड़िया क्या थी, इसका वीर को कोई अंदाज़ा नहीं था। फिलहाल वो अजीत से और ज़्यादा बातें भी नहीं कर पाया क्योंकि उसे गहरी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इसलिए वीर ने जल्दी से लाइन में लगकर रौनक के लिए चाट पकौड़ी ली और पुड़िया को चुपचाप छुपाकर सिंघानिया मेंशन की ओर लौट गया। वहीं दूसरी ओर सिंघानिया मेंशन में नानी माँ के कहने पर जल्दी ही फंक्शन की तैयारी शुरू हो गई। नानी माँ रक्षाबंधन का त्यौहार सबके लिए यादगार बनाना चाहती थीं। भले ही सभी लोग बहुत व्यस्त रहते थे, लेकिन इन दिनों सब एक परिवार की तरह रह रहे थे। इस परिवार की डोर को और मजबूत करने के लिए नानी माँ ने अब राखी के धागों का सहारा लिया था। आहान जब घर में सजावट होती देख रहा था तो पूरी तरह हैरान हो गया। ऊपर से रसोई में हलवा पूरी और ढेर सारे पकवानों की खुशबू पूरे मेंशन में फैल रही थी। सभी लड़के अलग अलग कामों में लग गए थे। फटाफट से खुशबू सूंघते हुए आहान हॉल में आकर नानी माँ के पास बोला, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या हो रहा है, आज खाने में क्या बन रहा है? आहान को चहकते हुए देखकर रौनक मुस्कुराकर बोली, आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो खाना बनेगा वो सिर्फ हमारे लिए बनेगा और मैं ही खाऊंगी, आपको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आहान ने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज थोड़ा सा तो मुझे भी दे दीजिए ना। तब नानी माँ मुस्कुराते हुए बोली, शायद बेटा तुम लोग भूल रहे हो कि कल रक्षाबंधन है। आस्था बिटिया भी वापस आ रही है, इसलिए उसकी पसंद की सारी मिठाइयाँ मैंने पहले ही बनवा ली हैं। और वैसे भी अब तो मुझे काम करने का सहारा मिल गया है। घर में जो नौकर चाकर हैं वो सब मेरे कहने पर काफ़ी कुछ बना लेते हैं, लेकिन वसुंधरा के साथ मिलकर काम करवाने में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। इतना सुनते ही सब हंस पड़े और माहौल खुशियों से भर गया और वे सभी वसुंधरा को पूरी तरह से सताना चाहते थे। तभी अचानक एक हल्की सी चीख की आवाज़ उन लोगों को सुनाई दी। सबके माथे पर बल पड़ गए। अचानक ये क्या हो गया? नानी माँ, आहान, रौनक, रश्मि, राधिका और वंशिका तुरंत किचन की ओर दौड़े। आकाश, सुमित और ध्रुव अभी एक जरूरी मामले पर डिस्कशन कर रहे थे, इसलिए आने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन उनके कानों में भी वसुंधरा की आवाज़ पड़ी तो वे भी दौड़कर आ पहुंचे। जैसे ही सब किचन में पहुंचे, उन्होंने देखा वसुंधरा कढ़ाई में पकौड़े तल रही थी। उसी वक्त गर्म तेल की कुछ बूंदे उसके हाथ पर गिर गईं। वो दर्द से बेकरार होकर चीख उठी थी। ये देखकर बाकी सब लड़कियों को वसुंधरा पर तरस आ गया। रश्मि तुरंत आगे बढ़ी और बोली, डोंट वरी, ये ठीक हो जाएगा। मेरे पास ऑइंटमेंट है, मैं अभी लगा देती हूँ। क्योंकि रश्मि डॉक्टर थी और किसी को दर्द में देख नहीं सकती थी, उसने वसुंधरा को बाहर ले जाकर सोफे पर बिठा दिया। सभी लोग वहीं खड़े थे क्योंकि वसुंधरा का हाथ वाकई काफी जल गया था। वहीं अरमान सिंघानिया अपनी स्टडी रूम में था, लेकिन वसुंधरा की आवाज उसके कानों तक पहुंच गई। बिना देर किए वो भी नीचे आया। जैसे ही उसने देखा कि सब लोग इकट्ठा खड़े हैं, वो चौंक गया। ठंडी आवाज में बोला, यहाँ क्या हो रहा है? अरमान की बात सुनकर सभी थोड़ा घबरा गए और चुपचाप इधर उधर देखने लगे, साथ ही अपने अपने पार्टनर से दूरी बनाकर खड़े हो गए। तभी अरमान की नजर वसुंधरा के जले हुए हाथ पर पड़ी। उसकी आंखों में जरा भी इमोशन नहीं थे। रश्मि जैसे ही वसुंधरा के हाथों पर ऑइंटमेंट लगाने जा रही थी, अरमान ने उसे रोक दिया और सख्त आवाज में बोला, कोई जरूरत नहीं है, इसे किसी भी तरह की ऑइंटमेंट या मरहम पट्टी की आवश्यकता नहीं। इस औरत के अंदर पैसों की इतनी आग है कि अब ये और किसी आग से जल ही नहीं सकती। अरमान की ये बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। वसुंधरा के दिल में आज अजीब सा दर्द उठा। उसे पहली बार ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। अरमान का इतना रूखा व्यवहार वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी आंखें भर आईं। साड़ी का पल्लू संभालते हुए वो सीधे अपने कमरे में चली गई। नानी माँ को बहुत बुरा लगा, लेकिन कोई भी अरमान के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। वसुंधरा के कमरे में जाने के बाद माहौल मायूस हो गया। रौनक ने उदास स्वर में कहा, वसुंधरा आंटी तो अपने कमरे में चली गई हैं, अब बाकी की पूरी कढ़ी कौन पकाएगा? ये सुनकर सब लोग चुप हो गए। मन ही मन सोचने लगे, सच में अब तो कढ़ी चावल का क्या होगा? लेकिन जैसे ही रौनक ने ये बात कही, सबकी आंखें अचानक उसकी ओर टिक गईं। रौनक ने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा और हंसते हुए बोली, मेरा मतलब सब लोगों का खाने का मन था ना कढ़ी चावल, पर अब तो वसुंधरा आंटी कमरे में चली गई तो कढ़ी चावल कौन बनाएगा? वैसे आस्था भी आ रही है और उसे तो ये बहुत पसंद है। रौनक की बात सुनकर आहान बड़बड़ाया, हे भगवान, ये लड़की क्यों बार बार शेर के मुंह में हाथ डालती है? क्यों बार बार भाभी का जिक्र छेड़ देती है? अब क्या होगा, कहीं भाई इसे जिंदा ही ना खा जाए। ध्रुव ने चिल्लाकर कहा, यार मुझे समझ नहीं आता, तेरी बीवी भी खतरों की खिलाड़ी है क्या? जब देखो भाई के साथ छेड़छाड़ करती रहती है, और तू भी जानता है कि उनके हाथों से छेड़छाड़ करने का मतलब है बम की पिन निकालना। अब वो कब फटेगा ये किसी को नहीं पता।
माहौल और भारी हो गया था। तभी नानी माँ ने बात को संभाला, अरे रौनक बिटिया, क्यों परेशान होती हो? तुमने हमारे हाथ की कढ़ी नहीं खाई है ना? आज हम तुम्हें चटपटी मसालेदार एकदम पकौड़े वाली कढ़ी खिलाएंगे। फिक्र मत कर, हम अभी जाते हैं और अपने हाथों में कड़छी थाम लेते हैं। ये बोलकर नानी माँ ने जल्दी ही माहौल हल्का फुल्का कर दिया था, लेकिन अरमान का मन अभी भी रौनक की बात पर अटका हुआ था। आस्था? आखिर ये आस्था कौन है? ये नाम वो दूसरी बार सुन रहा था। रौनक ने पहले भी आस्था का जिक्र किया था, लेकिन तब उसने समझा कि शायद ही किसी रेस्टोरेंट का नाम है। पर आज फिर ये नाम सुनकर उसे हैरानी हुई। उसने सोचा कि उसे पूछना चाहिए, मगर उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो किसी से सीधे इस तरह का सवाल नहीं कर सकता था। इसलिए उसने मन में ठान लिया कि वो खुद ही ये पता लगाएगा कि आखिर आस्था कौन है। फिलहाल कुछ सोचते हुए अरमान वहां से जाने लगा। वहीं दूसरी ओर आस्था ने एंजल के साथ मिलकर एक से बढ़कर एक पकवान बनाए थे। दादाजी की खुशी का इस समय कोई ठिकाना नहीं था। उनके दिल में उमंग ऐसे उमड़ आई थी जैसे बरसों से दबा हुआ कोई सुख अचानक मिल गया हो। वो ऑस्ट्रेलिया में कितने ही सालों बाद भारतीय भोजन बनते देख रहे थे। एक से बढ़कर एक बढ़िया व्यंजन बने थे और हर पकवान की महक में घर भर गया था। सब बेहद खुश थे। जब से उन्होंने अपने मन की बात अपने बच्चों के साथ बांटी थी, तभी से उनका दिल हल्का फुल्का हो गया था। अब उनके शरीर में भी काफ़ी राहत थी और वो पहले से बेहतर महसूस करने लगे थे। उन्होंने आस्था से वादा किया था कि जैसे ही उनकी टांगों का पूरा इलाज हो जाएगा और वो ठीक हो जाएंगे, तब वो इंडिया ज़रूर जाएंगे और वहां जाकर अपनी खोई हुई मोहब्बत को खोजेंगे, उसके बारे में पता लगाएंगे। सभी पकवान बनाने के बाद आस्था ने खुद अपने हाथों से सबको भोजन परोसा और अपने प्यारे गोपाल को गोद में लेकर ढेर सारा प्यार किया। वहीं अंश मन ही मन सोच रहा था, न जाने मेरे टीथ कब आएंगे, कब मैं भी अपनी माँ के हाथ का बना स्वादिष्ट पकवान खाऊंगा, तब तो मज़ा ही आ जाएगा। दादाजी की गोद में बैठे हुए वो यही ख्यालों में खोया था। आस्था ने मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूमा और कहा, बस एक बार मेरा नन्हा राजकुमार बड़ा हो जाए, फिर देखना मैं उसके लिए कैसी कैसी स्पेशल डिश बनाकर खिलाऊंगी। अंशमन सोचने लगा, क्या मेरी मामा के पास सचमुच कोई सुपर पावर है जो वो मेरे मन की बात जान लेती है? तभी आस्था ने अंजल को देखकर हंसते हुए कहा, काश मेरे पास सच में कोई सुपर पावर होती। मेरा बच्चा अभी छोटा है, अगर मुझे पता चल जाता कि वो कब क्या सोच रहा है तो कितना अच्छा होता। इतना सुनते ही दोनों हंस पड़ी। तभी अंश की किलकारियां कमरे में गूंज उठी। उसे मुस्कुराते देख अपने आप ही आस्था के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कान खिल गई। आज आस्था के लिए सबसे बड़ी खुशी यही थी कि अब वो अपने पति से मिलने जाने वाली थी। अरमान से दूर रहने का ख्याल भी उसके लिए असंभव था। ऊपर से अरमान ने उससे अब तक कोई बात भी नहीं की थी। यही बात उसे और भी बेचैन कर रही थी। इसलिए वो अब अपने ट्रिप का एक दिन पहले जाकर सभी लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी, स्पेशली अरमान को। हालांकि आस्था को इस बात का दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि इस बार वो किसी को सरप्राइज नहीं देने वाली थी, बल्कि खुद ही सरप्राइज होने वाली थी। फिलहाल माहौल में अच्छे से पूजा पाठ कंप्लीट करने के बाद मुहूर्त का पता लगाया गया और नानी माँ के आशीर्वाद से उसने जल्दी ही अविनाश को राखी और एंजल दोनों को राखी बांध दी। दोनों की आंखें नम हो गईं। अविनाश की कलाइयां आज पहली बार भरी थी तो वो बहुत ही ज्यादा खुश था। इतना ही नहीं, जितनी भी राखियां उसने आज तक खरीदी थी और हर साल संभाल कर रखी थी, वो सभी निकालकर आस्था के हाथों में थमा दी। आस्था ने देर न करते हुए वो राखियां एंजल और अविनाश दोनों को बांधना शुरू कर दी। फिलहाल वहीं दूसरी ओर अरमान जैसे ही अपने कमरे में गया, सभी लोग एक साथ एक बार फिर से हॉल में बैठे हुए थे, राधिका, वंशिका, रौनक, रश्मि और नानी माँ के साथ। लड़के लोग अपने गैंग में अलग बैठे हुए थे क्योंकि अरमान सिंघानिया घर पर ही था। ऐसे में सब एक साथ बैठकर किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकते थे। इसी बीच वीर, जो रौनक के लिए चाट पकौड़ी बाजार से लेने गया था, वो जल्दी ही उन्हें एक थाली में सजाकर रौनक के सामने लेकर आ गया। पकौड़ियां देखते ही रौनक का चेहरा खिल उठा। उसका बहुत दिल कर रहा था कुछ चटपटा मसालेदार खाने का। उसने फटाफट वीर के हाथ से चाट पकौड़ी लेना शुरू कर दिया। वहीं वीर अब अलग तरीके से मुस्कुराते हुए रौनक को खाने का आनंद लेते हुए देख रहा था। थोड़ी ही दूरी पर बैठे सभी लड़के, आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान, ये सब नोटिस कर रहे थे। उन्होंने गौर किया कि वीर किस तरह से रौनक को देख रहा है। ये देखकर अरमान ने अपने हाथों की मुठ्ठियां कसकर बंद कर ली। वो तुरंत ही ध्रुव के कानों में हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाया, देखा तूने, ये वीर रायजन तो नौकर बन गया है, लेकिन देखो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा। देख किस तरह मेरी हवा हवाई को खाते हुए देख रहा है।